سليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایسٹرن پنجاب میں ایک فقیر گزرے ہیں جن کا نام بھیک تھا. آپ نے کچھ لوگوں کے نام کے ساتھ غلام بھیک لگا ہوا دیکھا ہوگا. یہ انہیں بزرگ کے مرید ہیں جو اپنے نام کے ساتھ شناخت کے لیے غلام بھیک لگاتے ہیں. مجھے ویسے تو شعر یاد نہیں رہتے, لیکن ان کا یہ ایک شعر ایسا ہے جس میں تصوف یا روحانیت یا معرفت وہ پوری کی پوری سمائی ہوئی ہے. تو بھیک صاحب نے فرمایا کہ بھیکا بھوکا کوئی نہ, سب کی گردڑی لال, گرا کوئی نہیں جانتا, سب ہیں کنگال. یہ ایک ان کا شعر ہے. معرفت میں کہا یہ جاتا ہے کہ خدا تو خود ہمارے اندر موجود ہے, اس کو ہم ادھر ادھر کیا تلاش کرتے پھرتے ہیں. کسی فقیر نے ایک جملہ یوں کہا تھا کہ رب کو دیکھنا ہے تو سر ذرا سا جھکایا, دل پہ نظر ڈالی اور خدا کو دیکھ لیا. اس کے الفاظ پر نہ جائیے, مراد ان کی یہی تھی کہ خدا تو خود ہمارے اندر بستا ہے, ہم اس کو باہر کہاں تلاش کرتے پھرتے ہیں. یہ جو میں نے عرض کیا کہ اس کے الفاظ پہ نہ جائیے, بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی دیتی ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی ہیں. روحانیت میں بھی ہم ایک چیز ایک لفظ کا استعمال اکثر بیشتر کرتے ہیں, وہ ہے روح کی لطافت. لطافت بھی ایسی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی. تو جیسے کہا یہ جاتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ہر چیز کو ضد میں پیدا کیا ہے, جوڑے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. جیسے عمارت ہے, مفلوق الحالی ہے, خوشحالی ہے, مفلوق الحالی ہے, غریبی ہے, امیری ہے, تندرستی ہے, بیماری ہے, بلندی ہے, پستی ہے. تو یہ جوڑے ہیں لیکن ضد میں ہیں, ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, 180 ڈگریز اپوزٹ ٹو ایچ ادر. تو اسی طرح کچھ چیزیں رب تعالیٰ نے مرئی پیدا کی ہیں, کچھ غیر مرئی پیدا کی ہیں, دکھائی دیتی ہیں کچھ دکھائی نہیں دیتی ہیں. لطافت ہے وہ دکھائی نہیں دیتی, کثافت اس کی اپوزٹ ہے, اس کی ضد ہے, وہ دکھائی دیتی ہے. ہوا لطیف ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی, غبار کثیف ہے وہ دکھائی دیتا ہے. اسی طرح ہم ایک بات سوچتے ہیں सोच हमारी गैर मरई है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन अल्फाज इसका लिबास है। अल्फाज के मायने गैर मरई है, वो दिखाई नहीं देते। तो हम अपनी अपने इल्म की कमी की वजह से हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो दिखाई देती हैं, और उन्हें हम नहीं देखना चाहते जो दिखाई नहीं देती, इसलिए कि उनको देखने के लिए हमें निगाह कोई और चाहिए, वो मोमिन की फरासत चाहिए है उन चीजों को देखने के लिए जो मरे ही नहीं है। फकीर अल्फाज पर नहीं जाता, वो अल्फाज के मायने पर जाता है, उस रूह को देखता है जिस जो उन अल्फाज के पीछे है। तो बात हो रही थी कि रब तो खुद हमारे अंदर बसता है, हम उसको बाहर क्या तलाश कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक मौलाना रोम ने ये तशबीह दी, बड़ी गजब की तशबीह है कि हम जो रब को तलाश करते फिरते हैं जगह जगह, तो इसकी मिसाल ऐसी है कि एक इंसान के सर पर रोटियों से भरा टोकरा रखा हुआ है, लेकिन वो उस टोकरे से बेखबर है कि मेरे सर पर रोटियों से भरा टोकरा रखा है, और वो मफलूकुल हाल लोगों के दरवाजे पर जाके दस्तक देकर एक रोटी की भीख मांग रहा है। ये मौलाना रूम ने तशबीह दी है, बहुत ही गजब की है। अलूम की बात हो रही थी लास्ट संडे कि अलूम किसी किस्म के भी हों, इक्तसाबे इल्म तो किया जा सकता है बगैर उस्ताद के। हम गुफ्तगू सुनकर किसी की सीख लेंगे कुछ न कुछ, हम साहिब इल्म लोगों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर सीख लेंगे कुछ, लेकिन हम उसमें ताक नहीं हो सकते। तवक्ते के कोई शख्स हमें उसकी बारीकियां समझाने वाला न हो और वो उस्ताद है, अब उसको नाम कोई सा भी दे दीजिए, लेकिन कोई साहिब इल्म ऐसा होना चाहिए जो हमें गाइड कर दे इल्म की बारीकियों से, फन की बारीकियों से। और फिर इंसान अपने कमाल को पहुंच नहीं सकता जब तक के जिस इल्म को उसने सीखा है उस इल्म को एक्सरसाइज ना कर ले, उसको प्रैक्टिस ना करने लगे, वो कमाल को नहीं पहुंच सकता। हम मोटर मैकेनिक बन सकते हैं किताबें पढ़ पढ़ के, थ्योरी आ जाएगी लेकिन हम हाथ से काम कर नहीं पाएंगे। तवक्ते के किसी उस्ताद को पकड़ ना लें और उसको अपने हाथ से काम को हम करें नहीं, फिर हम सीख जाएंगे, करने लगेंगे। क्योंकि हमें थ्योरी आती है इसलिए हम अपने उस्ताद से शायद आगे निकल जाएं, क्योंकि उसके पास थ्योरी नहीं है। यही वजह है कि तसव्वुफ में ایسے بے شمار اولیاء اکرام گزرے ہیں جو کمال میں اپنے مرشد سے آگے نکل گئے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے یہ بات کبھی مانی نہیں ہے کہ میں اپنے مرشد سے آگے نکل گیا. وہ یہی کہتے رہے کہ صاحب میں تو اپنے مرشد کے جوتیوں کا طفیل یہاں بیٹھا ہوں, میرے مرشد تو بہت بلند ہیں. اس لیے کہ ایسے لوگ جو ایک کمال کو پہنچے ہیں وہ اس بات سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں کہ جب تک کہ ہم اپنے مرشد کو ایک بہت اعلی مقام پر بٹھا کر اس کی عظمت کو سلام نہیں کرتے, اس وقت تک ہم کسی کمال کو پہنچ نہیں سکتے. تو یہ مرشد ہی ہے جو ہمیں الفاظ کی روح پر غور کرنا سکھائے گا. کہ ہم الفاظ کو دیکھ کر اکثر مسلیڈ ہو جاتے ہیں, لیکن اس کی روح کو اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو پھر انسان صحیح سمت میں جاتا ہے. یہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ہمارے یہاں شادی کے نام پر زندگی کا سودا کر دیا جاتا ہے, اور ایک کلاس ایسی ہے جہاں پر لڑکی کی رضامندی کو باپ کی رضامندی کے سامنے ذرا بھی اہم نہیں سمجھا جاتا, جبکہ زندگی لڑکی نے گزارنا ہوتی ہے, والدین نہیں. تو پھر اپنی مرضی کی ایادیس کوٹ کر کے پریشرائز کیا جاتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر لڑکی انکار کر دے تو خواہ وجہ کوئی بھی ہو, تو کیا والدین کو حق ہے کہ اسے پریشرائز کریں اور منافقت بھری زندگی گزارنے پر مجبور کریں؟ اسلام اس بارے میں بہت کلیئر ہے. اسلام نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ کوئی رابطہ کسی قسم کا نہ رکھا جائے, بات چیت نہ کی جائے, سامنے نہ آیا جائے. لیکن یہ واحد موقع ہے جہاں رب تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات کر لیں, اس کو دیکھ لیں. یہ واحد ایریا ہے جہاں غیر محرم سے بات کرنے اور اس کو دیکھنے کی رخصت ہے. تو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے ہمیں کہ اسلام کتنی امپورٹنس دیتا ہے انسان کی مرضی کو. اور والدین کو بھی یہ چاہیے کہ جس حق جو حق رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے بچہ بچی کو, بیٹا بیٹی کو, وہ حق ہم نہ چھینیں ان سے. یہ حق رب نے انہیں دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں, پسند کر لیں, اگر پسند نہ ہو تو اپنی رائے کا اظہار کر دیں. تو جو حق رب دے دے کسی کو, کوئی انسان اسے کیسے چھین سکتا ہے؟ البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ نوجوانی میں انسان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا اور وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. ماں باپ نے زندگی گزاری ہوتی ہے زمانے کے سرد و گرم سے واقف ہوتے ہیں. تو والدین بچے بچی کو اپنی رائے دے سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, اور دلیل کے ذریعے ان کے سامنے چیز کو رکھا جا سکتا ہے کہ ہم اس لیے اس سے منع کر رہے ہیں, اس کی وجوہات یہ ہیں. لیکن اگر پھر بھی بچہ بچی اگر ضد کرتے ہیں تو بسم اللہ, زندگی انہوں نے گزارنی ہے, وہ اپنا حق ایکسرسائز کر لیں, تو ہمیں اجازت دے دینی چاہیے. وینی صاحب نے دوسرا سوال کیا ہے کہ ایک دفعہ سنا تھا کہ خدا انتظار میں رہتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے رجوع کرے. وہ کہتا ہے کہ اگر بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر جاؤں گا, اگر سرگوشی میں بھی پکارے تو میں لبیک کہوں گا. دوسری طرف وہ انسان کو پرکھتا رہتا ہے, اس پرکھنے میں کبھی کبھی سالوں گزر جاتے ہیں, تو وہ کوئک ریسپونڈ کیوں نہیں کرتا؟ خدا بن کے سوچتا ہے, بندہ بن کے کیوں نہیں؟ یہ بات درست سنی تھی آپ نے کہ رب اس انتظار میں رہتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کی طرف آئے تو چل کر آئے گا, تو رب دوڑ کر آتا ہے اس کی طرف. لیکن ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ دوستی ایک ہی طرح کے فطرت کے درمیان ہوتی ہے, ایک ہی طرح کی عادات کے درمیان ہوتی ہے. متضاد فطرت اور متضاد عادات میں دوستی کبھی نہیں ہوتی ہے. رب بہت پاک صاف ہے, رب سچا ہے, رب اپنے وعدے کا بھی سچا ہے, رب بہت خوش گفتار ہے, بہت پاک گفتگو کرتا ہے, رب غفور الرحیم ہے, بے شک وہ قہار و جبار بھی ہے, لیکن اس کی وہ صفت بہت کم ایکسرسائز کرتا ہے اپنی قہار و جبار ہونے کی, وہ غفور الرحیم ہی رہتا ہے. تو اس کی دوستی اسی انسان کے ساتھ ہوگی جس کے اندر پاکیزگی ہوگی, طہارت ہوگی, خوش گفتار ہوگا, پاک و صاف گفتگو کرے گا, باوقار ہوگا, اس لیے کہ رب بہت باوقار ہے, تمکنت ہے رب میں. تو ایسے ہی لوگوں کو وہ پسند کرتا ہے, ان سے دوستی کرتا ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ وہ پرکھتا کیوں ہے, تو رب ہمارا خالق ہے, وہ ہمیں سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہم ہیں کیا. تو اگر الفاظ آسان الفاظ میں اس کو بیان کیا جائے تو ہمارے کرتوت سے وہ خوب واقف ہے. تو جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں رب کے ساتھ دوستی کا, اس کے ساتھ سنسیریٹی کا, تو وہ پرکھتا ضرور ہے, اپنے لیے نہیں, اس لیے کہ وہ تو غیب کا علم رکھتا ہے, وہ تمام ظاہر اور پوشیدہ چیزوں سے واقف ہے. وہ خود ہمیں دکھانے کے لیے کہ یہ تمہاری اصلیت ہے, کہ ذرا ٹیسٹ آیا اور تمہاری چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں. تو مجھ سے دوستی کے دعویٰ ہے, وہ ہمیں دکھانے کے لیے کر دے گا, ورنہ اس کو ہمیں پرکھنے کی ضرورت نہیں, وہ تو ہم سے خوب واقف ہے. तो वो हमें दिखाना चाहता है कि ये तुम्हारी असलियत है, कि जरा सी आजमाइश आई है तुम पर और तुम्हारी आह पुकार शुरू हो गई है। हाँ, अलबत्ता अगर उसका कोई बंदा आजमाइशों के सामने सब्र करता है, बर्दाश्त नहीं करता, सब्र करता है, तो फिर वो दोस्ती अता कर देता है अपनी। और बर्दाश्त करने में और सब्र करने में बहुत बारीक सा एक फर्क है कि जब हम मुसीबतों में से गुजरते हैं और हाय हाय करते हुए गुजरते हैं, तो गुजरना तो है ही हमें, तो वो बर्दाश्त है। लेकिन जब उन्हीं मुसीबतों को हम हंसते खेलते झेल जाते हैं और कहीं उफ नहीं करते, किसी से जिक्र नहीं करते कि मैं मुश्किल से गुजर रहा हूं, वो सब्र है। उस आलम में भी हमारी जुबान से एक ही बात निकलती है कि अल्लाह का बहुत एहसान है मुझ पर, अल्लाह की बड़ी इनायात है। फकीर मकर करता है, मकर किस तरह से करता है कि जब वो भूखा होता है तो अपने आप को पेट भरा जाहिर करता है, जब तंगदस्त होता है तो अपने आप को खुशहाल जाहिर करता है, जब मुसीबत में होता है तो अपने आप को राहत में जाहिर करता है। ये मकारी है उसकी, यही सब्र है। इसीलिए रब ताला फकीरों को अजीज रखता है। तो ये आजमाइश से रब हमें नहीं जानना चाहता कि वो तो हमें पहले ही से जानता है, लेकिन वो हमें आईना दिखा देता है। तो रब के यहां टाइम स्केल हमारी दुनिया के टाइम स्केल से कहीं ज्यादा है, और फिर समहाउ द अदर हम सब बमाए मेरे न तो इंतजार करने की आदत हमारी बरकरार रही है और न हमें सब्र रहा है, तो हम बेसब्र हैं। हमारी ख्वाहिश ये होती है, कम से कम मेरी तो होती है, कि अगर मैंने जिंदगी में कहीं एक नमाज पढ़ ली, एक सजदा कर लिया, तो मैं इस जस्तजू में लगा रहता हूं कि मैं वली अल्लाह कब बनूंगा। ऐसे लोग कुछ पाते नहीं है, इन्हें कुछ नहीं मिलता। वो लोग जो रब को सिर्फ रब जान के, ये जान करके वो लायक इबादत है, उसकी न सिर्फ इबादत करते हैं बल्कि उसकी बंदगी भी करते रहते हैं, वही वो लोग हैं जो सब कुछ पा जाते हैं। क्योंकि तसव्वुफ की राह का दस्तूर है कि जिसने ये तांग लगाई कि मुझे कब कितना मिला, उसे कभी कुछ ना मिला। और जो इन चीजों से बेपरवाह होकर सिर्फ अपने रब को पूछता रहा, वो सब कुछ ले गया। ये दस्तूर है इस राह का। यूनी साहब का तीसरा सवाल है कि जब मर्द तसव्वुफ की राह पर चलते हैं तो कभी जंगलों का रुख करते हैं, कभी सहराओं का, खुदा को जिस तरीके से ढूंढना चाहे ढूंढ लेते हैं, अकेले रहना चाहें तो भी कोई सवाल नहीं, जबकि औरत के लिए यहां भी बैरियर्स हैं। क्या औरत के अंदर शम्स तबरेज रूमी जैसी रूह नहीं हो सकती? औरत को ये कह के बहला देना कि घरदारी ही उसकी इबादत है, जबकि उसकी रूहानी केमिस्ट्री को अगर डोमेस्टिक लाइफ सूट न करे और वो भी अकेले रहना चाहे तो। मुझे आपके इस सवाल से पूरा इत्तेफाक है। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगा, कि क्या दुनिया में रबताला के अलावा कोई भी ऐसा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तसव्वुफ रखता हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा रूहानियत रखता हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा रब की बंदगी कर सके? क्या कोई ऐसा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इबादत कर सके? हमारा जवाब यकीनन ना में आएगा। मुझे याद नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर सोशल लाइफ गुजारी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर फैमिली लाइफ गुजारी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर दुनियावी जिंदगी गुजारी है। इंसान पर रब ताला ने जो चीजें फर्ज की हैं, जैसे इबादत हम पर फर्ज है, उसकी पूछगिछ होगी रोज कयामत कि हमने रब ताला की इबादत से मुंह क्यों मोड़ा, उसका जवाब हमें देना होगा। इसी तरह मर्द हो या औरत, हर इंसान पर उसकी फैमिली लाइफ के हवाले से बहुत से चीजें फर्ज हैं। अगर हमसे वहां कोताही होती है कि हम जंगलों का रुख कर लें कि हमें रब को पाना है, तो उस फर्ज से मुंह मोड़ने का जवाब रब को देना होगा। हमसे पूछगिछ होगी रोजे कयामत उसकी। हमारी सोशल लाइफ में हम पर बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, अगर हम उसमें फेल करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम सहरा में जा निकले कि रब को पाना है और उन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा, तो उसके लिए हमें आंसरेबल होना है अल्लाह को। जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, मेरे नजदीक वो अगर किया जाए तो गलत होगा। या यूं कहिए कि मेरे नजदीक सिर्फ वही चीज सही है जो कुरान और सुन्नत से साबित हो जाए, उसके अलावा हर काम गलत है। तो मर्द हो या औरत, उसको अपनी जिम्मेदारियां निभाना है और उसके साथ साथ रब को पाना है, दोनों ही बातें हैं। फर्क यह है कि हम दुनिया में इस तरह रहते हैं कि हमारे एक हाथ पर दुनिया और दूसरे में दीन, और दोनों हाथ एक लेवल पर रहे, ऊपर नीचे न जाने पाए, दोनों के साथ यकसा इंसाफ कर पाए हम। लुत्फ तो वही है, ये तो कोई रूहानियत और तसव्वुफ नहीं है कि इंसान दुनिया से मुंह मोड़कर वीरानों में चला जाए। एक जमाने में मैं मुर्शिद साहब की खिदमत में बैठा करता था, उस वक्त गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, तो एक मीटिंग के लिए मैं इस्लामाबाद जा रहा था। उन दिनों जीटी रोड से गुजरांवाला की बाईपास नई नई बनी थी, उसका इफ्तिताह नहीं हुआ था, ट्रैफिक के लिए बंद थी। तो मैं घर से चला सुबह की नमाज के बाद, तो अभी अंधेरा ही था, तो मैं गुजरांवाला जा पहुंचा। तो वो सड़क नजर आई तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि सड़क किधर जाती, तो उसने कहा कि सर ये बाईपास बनाई है लेकिन अभी खोली नहीं ट्रैफिक के लिए। तो मैंने उससे कहा कि चलो इधर से देखते हैं। तो वो सड़क उसके दोनों तरफ लहलहाते खेत थे, सन्नाटा। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि यहां कहीं घर बनाया जाए, इंसान तन्हा यहां रहे, अल्लाह अल्लाह करे हफ्ते में एक बार चला जाए शहर और शॉपिंग करके आ जाए। तो मैंने देखा कि खेतों में एक साहब खड़े थे, तो मैंने गाड़ी रोकी और उन साहब की तरफ जाने लगा। तो उन्होंने देखा कि कार रुकी है और कोई उन तक आने की कोशिश कर रहा है, तो वो साहब खुद भी आ गए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो जमीनें हैं इनका मालिक कहाँ है। उसने फरमाइए मैं मालिक हूं। तो मैंने इसे कहा कि इन जमीनों के एन दरमियान में कहीं दो कनाल जगह आप मुझे फरोख्त कर सकते हैं। तो उसने मुझे देखा, गाड़ी को देखा, ड्राइवर को देखा, तो कहने लगा आप क्या करेंगे इस जगह। तो मैंने उसे बताया कि मैं यहां एक कमरा बनवाऊंगा और बस यहां रहूंगा, अल्लाह अल्लाह करूंगा। तो उसने बहुत गौर से मुझे देखा। तो मैंने उससे पूछा कि किस भाव देंगे। तो सोच कर उसने कहा कि आप ऐसा करें, आप फ्री ले लें दो कनाल, लेकिन ये बताइए वहां तक पहुंचेंगे कैसे आप। तो मैंने कहा कि जहां मैं खड़ा हूं यहां से इतना रास्ता आप फरोख्त कर दें मेरे हाथ जहां कार जा सके। तो कहने लगे चलिए मैं दे दूंगा आपको, लेकिन कीमत नहीं लूंगा, आप ले लीजिए जमीन मुझसे। तो मैं बड़ा खुश था, मीटिंग अटेंड की और रात को वापस आया तो अपने मुर्शिद साहब से मिला। तो मैंने उनको बड़ी खुशी से यह खबर सुनाई कि इस तरह जगह मुझे मिली है, तो वहां बैठ के अल्लाह अल्लाह करेंगे। तो बजाय वो अप्रिशिएट करने के आगे से डांट पड़ गई कि ये कौन सी इबादत की राह है कि तुम दुनिया छोड़कर वीरान इलाके में चले जाओ, ये तो कोई भी कर लेगा, कमाल तो ये है कि तुम दुनिया में रहो और उसके बावजूद दीनदार रहो। तो बात यह है कि अगर रब को जल्दी पाना है और रब के बहुत करीब जाना है तो फिर सुन्नत के ऐन मुताबिक भरपूर दुनियावी जिंदगी गुजारना होगी हमें, और उसके साथ साथ भरपूर दीनी जिंदगी भी, दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा इस अंदाज में कि कहीं किसी जगह भी हमसे नाइंसाफी ना हो पाए, तराजू किसी एक तरफ ना झुकने पाए, वो लेवल रहे। तो ख्वातीन घरेलू जिंदगी गुजारने के साथ साथ, आप जिन साहब ने भी सवाल किया वो ये क्यों भूल गए कि शम्स तबरेज और मौलाना रोम जहां पैदा हुए हैं वहां राबिया बसरी भी पैदा हुई है। एक साहब का सवाल है कि बाज अफराद हज उम्रे के लिए जाते हैं तो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर उनको ऐसा महसूस होता है कि यहां से चले जाना है, या उन पर नींद का ऐसा खुमार होता है कि उनके लिए वहां ठहरना मुमकिन नहीं होता। बाज अफराद वहां जाकर ऐसा बीमार होते हैं कि जिंदगी में शायद ही उन्होंने ऐसी बीमारी इससे पहले काटी हो, इन सब की क्या वजूहात हो सकती हैं। शायद इन सब में उन अफराद की कोई कोताही है। ये अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि रब ये दावा करने वालों को कि वो रब से दोस्ती चाहते हैं उन्हें आजमाता जरूर है। इसी तरह बाज़ औकात जब हम किसी इनाम के करीब जा पहुंचते हैं कि हमें इनाम हासिल होना होता है तो शैतान हम पर गलबा कर लेता है और हम उस लम्हे को खो देते हैं। जब ऐसी कैफियत हो, ये सिर्फ हज और उमरे ही पर मौकूफ नहीं है बल्कि खुद ये हम घर में बैठ के मस्जिद में बैठ के जो इबादत कर रहे होते हैं इस दौरान भी ये कैफियत होती है कि इंसान को नींद आ जाती है। तो अगर इंसान अपने नफ्स के साथ लड़ता रहे तो फिर मकाम हासिल करता है, लेकिन अगर मगलूब हो गया तो फिर वो लम्हे खो दिए उसने। तो ऐसे मौके पर इंसान को अपने ऊपर जबर करना चाहिए, अपने नफ्स के साथ लड़ना चाहिए और इबादत पे ज्यादा जोर देना चाहिए ताकि शैतान भाग जाए। किसी धाम में सूरह वाकया की आयत नंबर 75 और 76 के बारे में फरमाया है कि रब ताला ये फरमाता है कि हमें सितारों की मंजिलों की कसम, अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है। तो आगे लिखा है कि काइंडली Please elaborate the significance and meaning of the above verses. बात यह है कि रब ताला ने ये कायनात तख्लीक की है और इसमें ऐसे अजाबात रखे हैं उनका अदराक हमें हो नहीं पाता और रब ताला हमसे ये इसरार करता है कि हम उसके मजाहिर पर गौर करें। इसमें एक चीज इम्पॉर्टेंट है कि रब ताला की जात पर गौर करने की इजाजत नहीं है लेकिन रब ताला के कुदरत के मजाहिर पर गौर करने की दावत देता है रब। ये निजाम कैसे काम कर रहा है, कितने निजामे शमसी हैं, कितनी कहकशाएं हैं, ये सब वो असरार हैं जिस पर गौर किया जाना चाहिए। तो रब जब कसमें खाता है अपनी कुदरत की इन मजाहिर की, रब ताला ने मुतअद्दद जगहों पर कसम खाई हैं, और तो और घोड़े से के सुमों से निकलने वाली चिंगारियों की भी कसम खाई है, घोड़े के नथनों से निकलने वाली गर्म हवा की कसम खाई है। ये चूंकि एक ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक आसमानों के इल्म से है, तो इसमें एक चीज उसने और वाजे कर दी रब ताला ने कि अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है कि ऐसा मकाम है जिसको जरूर, जिस पर गौर किया जाना चाहिए, उसको जाना जाना चाहिए ताकि हमारा ईमान रब पर पुख्ता हो जाए, हमें ये पता चल जाए कि हमारा रब अजीम तरीन है कि जिसने ये सब तखलीकात की हैं। तो वो यूं दावत दे रहा है, उस पर गौर की, हमें रब ताला की कुदरत के मजाहिर पर गौर फिक्र करते रहना चाहिए। इन्हीं साहब का दूसरा, सवाल सूरह बकरा की आखिरी दो आयात 285 एंड 286, कोई ये डिस्टिंक्शन है कि उनका नजूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमानों में किया गया था, इन आयात को रेगुलरली पढ़ने की फजीलत पर रोशनी डालिए। जाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे मुश्किल काम मुझे जो महसूस होता है वो होता है कि कुरान की मुख्तलिफ सूरतें और उनकी आयात को रेगुलरली पढ़ने से जो दुनियावी फवायद हासिल होते हैं उनको बयान किया जाए। मुश्किल इसलिए मुझे लगता है, जिस तरह एक शख्स की अपनी एक दिलचस्पी होती है, क्रिकेट से है अगर आपकी दिलचस्पी तो आप क्रिकेट पर जब बात करेंगे तो आप में आपकी अपनी उसमें मर्जी भी शामिल होगी और आपको खुद मजा भी आएगा उसको। इसी तरह अगर किसी चीज से आपकी दिलचस्पी नहीं है या वो इंसान की समझ से बालातर है, उसके बारे में गुफ्तगू करता हुआ वो खासा मुश्किल में रहता है। बात यह है कि मालूम नहीं ये क्यों एक ख्याल मेरे जहन में बैठ गया कि रब ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया था हम पर कि ये हमें राह हिदायत दिखा दे, सीधी राह दिखा दे, और सीधी राह देखने की बुनियादी शर्त यह है कि दिल से दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, क्योंकि फसाद की असल जड़ यही चीज है। तो जो चीज रब ताला ने हम पर नाजिल फरमाई थी, हम पर उतारी थी, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचाई थी, इसलिए कि वो हमारे दिलों से दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत निकाल दे, तो हम उससे ये काम लें कि उसी माले दुनिया को कमाने के लिए उन सूरतों और उन आयात का इस्तेमाल शुरू कर दें। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई हमें एक ऐसा औजार दे कि इससे इंसान जो तकलीफ में है उनके कैंसर ज़दा उसको काट कर आप उस इंसान को तकलीफ से निजात दिला दें, हम उसी चाकू को राजधानी के लिए इस्तेमाल करें कि उस चाकू के जोर पर लोगों को लूटें और माले दुनिया जमा कर लें, तो कहां तो वो चाकू दिया गया था इंसान की भलाई के लिए, उनको राहत देने के लिए हम उससे दुनिया कमाने का काम लेने लगे। कुरान पाक की तलावत भाई से सवाब है, हम इसको अल्लाह का कलाम समझकर अगर पढ़ें اور یہ سمجھ پر کر اس پر عمل کریں کہ رب نے کلام پاک اتارا اس لیے تھا کہ ہم اس میں دیے گئے احکامات پر عمل کریں تو بھائی سے نجات ہے. نہ کہ جس چیز سے رب تعالی ہمیں دور کرتا ہے, دور ہونے کی تلقین کرتا ہے, ہم قرآن کو اسی کام کے لیے استعمال کر لیں. یہ میری ذاتی تھنکنگ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی ویسے سمجھیے اسے. تو چونکہ ذہن میں میرے یہ خیال ہے تو جب میں کسی سورہ یا کسی آیت کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کے دنیاوی فوائد ایسے ہیں تو شاید وہ میرے لیے خاصا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور یہی معاملہ دعاؤں کا رہے ہے, یہ سمجھ میں نہیں آیا, یا یوں کہیے کہ میں چونکہ علم سے بے بہرا ہوں تو میرے اندر وہ عقل اور سمجھ موجود نہیں ہے جس سے میں یہ حکمت سمجھ سکوں کہ رب تعالیٰ نے تو احکامات یہ دیے کہ خون کا بدلہ خون ہے یا خون بہا ہے, یا تیسری چیز یہ ہے کہ مقتول کے وارثان انسان کو معاف کر دیں. اب یہ رب تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا, ایک فیصلہ کر دیا. اب میں ایک آدمی قتل کر دیتا ہے تو اس کی رہائی کے لیے دعا کی جائے رب تعالیٰ سے. رب تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تین ہی صورتیں ہیں, خون کا بدلہ خون ہے, یا خون بہا ادا کر دو, یا لواقین معاف کر دیں. چوری کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں, میں پکڑا نہ جاؤں. رب تعالیٰ جھوٹ سے منع کرتا ہے, رب تعالیٰ دھوکہ دہی سے منع کرتا ہے, رب تعالیٰ قانون کی پابندی کی تلقین کرتا ہے. مسلمان پر فرض ہے رب کے قانون کی پابندی اور لا آف دی لینڈ کی پابندی. ہم دھوکہ دے کے ویزا لیتے ہیں کہ ہمیں وزٹ پر جانا ہے, وہاں جا کے ہم کام کرتے ہیں, پھر اوور سٹے کر کے لیگل ہو جاتے ہیں, اور دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لیگل ہو جائیں. میں نے پہلے معذرت کر لی کہ شاید چونکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو میرے اندر شاید وہ اتنی عقل اور فہم و فراست نہ ہو کہ میں اس قسم کی دعاؤں کی باریکیوں کو سمجھ سکوں. لیکن ایک عجیب سی بات, ایک عجیب تھنکنگ ہوتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم رب کے قانون کو توڑیں اور پھر رب سے کہیں کہ اس کو ٹھیک کر بجائے معافی مانگنے کے. اس بات پہ اگر غور کر سکیں تو دیکھیے کہ ہم ایک مسلمان کا سا کیریکٹر ڈیمونسٹریٹ کر سکیں کہ مسلمان کردار کا کیا ہوتا ہے, اور وہ نمونے ہمارے پاس موجود ہیں اسلام کے شروع کے چند سو سال. اور اس کیریکٹر کو مینٹین کرنے کے انعامات بھی رب تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیے کہ ہم انتہائی عروج کو پہنچے تھے اور ہم نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی تھی. یہ انعام ہے اس کا کہ اگر ہم قرآن کے مطابق اپنے किरदार को ढाल सकें तो उसके इनामात फिर उसी तरह मिलेंगे कि हम अपने अरूज को जा पहुंचेंगे। अगली इतवार तक के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी फिर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।